ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है।
आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की अनुपम माला।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई प्रोग्राम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के बाल्यकाल के कुछ अलौकिक प्रसंग एवं अवतार वाणी के अंतर्गत 1 जून सन 2001 में भगवान द्वारा मुंबई स्थित निवास आश्रम धर्म क्षेत्र में दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग सुनेंगे। हम गान सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए एक मनोरम गीत के साथ ही साथ भजन शिक्षा के अंतर्गत भगवान कृष्ण का एक भजन गायन भी सीखेंगे।
तो चलिए कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हैं।
साई राम प्रेमावतार श्री सत्य साई के आज के इस प्रसारण में हम आनंद लेने जा रहे हैं भगवान बाबा द्वारा भक्तों के साथ की गई यात्राओं में प्राकृतिक छटा से भरपूर स्थानों पर भगवान के साथ आहार ग्रहण करने के आनंद का, मूक व निरीह पशुओं के प्रति भगवान के स्नेह का और साथ ही जैक एवं जिल नामक दो कुत्तों को प्राप्त हुए भगवान के अनुग्रह के विवरण का। इसके साथ ही हम प्रशांति निलयम में भगवान के दर्शनों का आनंद और भगवान के अनुग्रह की सामर्थ्य का विवरण सुनेंगे।
प्रशांति निलयम की दाईं और बाईं ओर तथा पिछली ओर भी बाबा की स्वीकृति से अनेक भक्तों ने अपने अपने घर बसाए। बाबा के उस स्थान की प्रत्येक कार्य योजना को स्वयं बनाने के कारण भक्तों को जप ध्यान में निरत हो आनंद के अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। प्रशांति निलयम के चारों ओर फैले उद्यान का बाबा ने ही पोषण किया है। अनेक स्थानों से फल और फूलों के पौधे मंगवाकर वहां लगवाए हैं। अनुपम सौंदर्य ही आनंद है। बाबा कहा करते, कार से यात्रा करते समय भोजन या अल्पाहार के लिए वे एक शांत सुंदर स्थल चुनकर वहीं विश्राम करते। किसी भी नए प्रदेश में वह उस प्रदेश के सुंदर स्थान को यात्रा में सुलभता से ढूंढ लेते। नीलगिरी हो तो कर्पूर वृक्ष, कुड़ाई कनाल हो तो सुखद शीतल तालाब का किनारा, कश्मीर हो तो झाड़ियों से आवृत चट्टान, बल्लारी के काली पृथ्वी के प्रदेश में पुल का तला, श्रीरंगपट्टनम के समीप कावेरी का किनारा, केरल में नारियल वृक्षों से भरा द्वीप, सामलकोटा में वट वृक्ष के समीप की छाया बाबा को आकर्षित करते। यात्रा करते समय बाबा साथ के लोगों से, वो देखो सूर्यास्त का सौंदर्य, ये देखो चंद्रमा को घेरे हुए चांदी का छत्र, उधर श्याम घन पटल पर बादलों का रचाया हुआ चित्र, वर्षा के श्याम बादलों तले उड़ता श्वेत पक्षियों का दल, कहकर भक्तों के मन में सौंदर्य की उपासना का भाव जागृत करते। प्रशांति निलयम अनेक गाय बछड़ों से भरी गौशाला भी है, जिसे देखकर अन्य किसान अपने लिए एक आदर्श मानकर स्वग्रामों को लौटते हैं। गायों को बाबा स्वयं ही चारा डालते, उनमें से पुष्ट गाय बछड़ों को मेले में भेजते। त्योहार के दिन भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों से अलंकृत कर उनका जुलूस निकाला जाता। इसी प्रकार मोर, हिरण, सारस आदि भी बाबा ने प्रेम से पाले। कुछ महीनों तक निलयम में एक घोड़ा भी रखा गया था। बाबा को कुत्तों से विशेष प्रेम था। उनके पास कोई न कोई कुत्ता रहता ही था। जैक जिल नाम के कुत्तों की एक जोड़ी पुराने मंदिर के निर्माण काल से ही उनके पास थी। वे दोनों पवित्र आत्मा थे क्योंकि बाबा स्वयं उनकी प्रशंसा किया करते थे। उनके पूर्व जन्म का न जाने कौन सा विशेष संस्कार था कि वे दोनों प्रति गुरुवार को भोजन ग्रहण नहीं करते थे। मांसाहार से उन्हें घृणा थी। बाबा के शैया के समीप ही सोते थे। इस प्रकार 3 वर्ष तक भगवत सामीप्य का अनुभव कर एक दिन जैक बाबा के समीप आकर सदा के लिए उनके चरणों में लीन हो गया। वो दुर्घटना अति करुणापूर्ण एवं संतापजनक है। उन दिनों मोटर कार की गांव में प्रवेश करने की सुविधा नहीं थी। वे नदी के उस किनारे पर कर्नाट नागपल्ली के एक उद्यान में ही छोड़ दी जाती थी। जैक की एक विचित्र आदत थी कार से उतरकर आए लोगों का स्वागत करना, उनके आसपास ही दौड़ धूप करते रहना, उनके साथ उद्यान में जाना, कार के नीचे सो जाना और कोई गांव का बच्चा कांच में से अंदर झांकने के प्रयत्न में हो तो उसे डराकर भगा देना। एक दिन जैक का कार के नीचे सोना न जानते हुए ड्राइवर ने जब कार चलाई तो उसकी पीठ की हड्डी में चोट लग गई। घायल जैक किसी प्रकार अत्यंत साहसपूर्वक नदी के इस पार आकर येन केन प्रकारेण अपने निरुपयोगी पिछले पैरों को घसीटता हुआ मंदिर की देहरी तक पहुंच गया। उससे आगे लुढ़कता हुआ ही वो बाबा के समीप आ गिरा। उसकी अंतिम स्थिति जानते हुए बाबा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में कुछ आया, होठों पर कुछ नाच उठा, हृदय में कुछ उमड़ आया, दुम कुछ हिली और आंखों की चमक सुप्त हो गई। जैक की अनुपस्थिति में जिल को अपना जीवन बेकार प्रतीत होने लगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और किसी प्रकार अत्यंत कष्टपूर्वक 1 सप्ताह का समय बिताया और फिर सदा के लिए शांत हो गया। पुराने मंदिर के आंगन में जैक और जिल के शरीर को मिट्टी के हवाले कर बनाया गया वृंदावन आज भी देखा जा सकता है। चिट्टी बिट्टी लिल्ली बिल्ली नामक कुत्तों की 2 अन्य जोड़ियां भी बाबा के दर्शन स्पर्श लालन पालन आदि से अनुग्रहित हुईं। इनके पश्चात मिन्नी मिकी हनी गोल्डी नामक कुत्तों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा की इस प्रकार की कृपा भक्तों पर रहती ही है। फिर भी पशुओं के प्रति अपना प्रेम दिखाकर प्राणियों की सेवा के विषय में हम लोगों में आवश्यक प्रेम एवं आदर का बोध वे देते ही रहते। प्रशांति निलियम में कुछ समय तक रोवर रीटा टॉमी हेनरी नामक अल्सेशियन कुत्ते भी थे। सृष्टि के अन्य प्राणियों के विषय में भी बाबा का यही उपदेश है। वे किसी भी प्राणी को तुच्छ नहीं समझते। निरीह पशुओं को काटकर अपने छोटे से पेट को भरना बाबा को कतई स्वीकार नहीं। बाबा का भक्तों के लिए किया गया संकल्प भी भक्तों की साधना के अनुसार ही होता है। बाबा कहते हैं कि परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी ही देता है और परीक्षक उसका भली भांति अवलोकन करके ही अंक देता है। उसी प्रकार मैं भी तुम जैसा और जितना लिखते हो उतने ही अंक देता हूं, परंतु तुम्हारे उत्तरों से तुम्हारी श्रद्धा भक्ति शास्त्रों के अभ्यास में तुम्हारी रुचि अभिरुचि और उत्साह देखकर प्रोत्साहन देने के लिए मैं यथोचित अनुग्रह के अंक अर्थात ग्रेस मार्क्स देता हूं। इसी को भगवत अनुग्रह भी कहते हैं। बाबा ने यह भी कहा है कि उनके अनुग्रह के बिना उनका दर्शन लाभ भी कठिन है। उन्होंने कहा है कि यदि मेरी इच्छा नहीं है तो कोई भी मेरे दर्शन के लिए घर से प्रस्थान नहीं कर सकता, और यदि घर से प्रस्थान करे भी यहां तक नहीं पहुंच सकता, और यदि पहुंच भी जाए तो दर्शन नहीं पा सकता। ये अनेकों का अनुभव भी रहा है। असंभव सी दिखती हुई पुट पड़ती यात्रा अचानक संभव हो गई। भक्तों को यात्रा के व्यय के लिए पैसों की भी व्यवस्था हो जाती है। नौकरी पेशा करने वालों का अवकाश भी स्वीकृत हो जाता है। स्नेहिल स्वजनों का साथ भी मिल जाता है। पुराने भक्त पथ प्रदर्शन भी कर देते हैं और बाबा के अनुग्रह से सब बाधाओं एवं कष्टों का निवारण हो जाता है। प्रशांति निलयम से लौटते समय प्राप्त दर्शन ही प्रत्येक का चिरस्मरणीय सौभाग्य बन जाता। हमारे जीवन की जड़ता को दूर करता हुआ वो मंगलमय मुहूर्त अविस्मरणीय है। तब हमें उनके सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकत्व के स्पष्ट दर्शन होते। उसी समय उनकी अपार करुणा का हमें ज्ञान हो जाता। उनकी प्रेम पूर्ण बातें सुनकर हम उनके चरण कमलों में स्वयं को अर्पित कर देते। वे किसी भी बात से अनभिज्ञ नहीं, फिर भी कितने वात्सल्य से वह हमें अपना लेते। उनकी अपार करुणा, देखभाल, अंतरंगता, क्षमा असीम है। हमसे अधिक वे हमें जानते हैं। हमारे अंतःकरण के प्रत्येक व्यवहार को वे भली भांति जानते हैं। यदि हम उनके पास 10 प्रश्न पूछने जाएं, तो प्रश्न पूछने से पहले ही वे केवल उन 10 ही नहीं, वरन हमारे अंतःकरण में भविष्य में रूप पाने वाली शेष 10-12 समस्याओं को भी हल कर देते। सब कुछ स्पष्ट कर, हमारी आंखें खोलकर, हृदय शांत कर, हमें उन्नत पथ की ओर अग्रसर कर, हमारे उत्साह का स्रोत बढ़ाकर, हर्ष प्रदान कर वापस भेजते हैं हमारे बाबा। बाबा की ये करुणा निरंतर प्रसारित होती रहती। बाबा के साथ किया गया संभाषण समाधान प्राप्त करा देता। ये तो ठीक है, किंतु वह संभाषण इससे भी अधिक प्रभावशाली होता। वह हमारे अंतःकरण को चेतावनी देकर उसमें छिपे दोषों को स्पष्ट कर देता। उन्हीं की कृपा से हम अपने को भली प्रकार जानकर सुधार भी लेते हैं। हमारे उत्तरदायित्व, हमारी सामर्थ्य एवं कई विषयों के संबंध में हमारे अज्ञान को वे स्पष्ट कर समझा देते, किंतु ये सब वे टीका अथवा कटु वचनों द्वारा नहीं, वरन पीठ थपथपाते बंगारू अर्थात स्वर्ण समान आदि प्रिय वचनों द्वारा संबोधित करते। माता के वात्सल्य से भरी बातों से भी अधिक मधुर वचनों द्वारा समझाते। सरल भाषा, सरल शब्दों से युक्त उनकी बातें हमारे लिए संजीवनी शक्ति के समान है। हमारे जीवन की चिंता, प्रार्थना, बीती हुई एवं आगे घटने वाली बातें वे कैसे जान लेते हैं, ये सोचकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते। बाबा से अपने सुधार के लिए मिले आशीर्वाद का प्राप्त होना बड़ी बात है। इस प्रकार पुटपर्ती गए भक्त तन तो लेकर लौटते हैं, पर उनका मन तो बाबा के पास ही रह जाता है। प्रशांति निलयम का परम संकल्प मानव कुल का उद्धार करना है, इसी कारण यह अवतार आया। उन दिनों बाबा प्रशांति निलयम के विषय में कहते, ये मेरी सेना का केंद्र स्थान है, और आज प्रशांति निलयम वास्तव में विश्व भर की साईं सेना का मुख्यालय है ना? जय साईं राम।
पुट्ट परती बन गया धाम साईं युग की नव चेतना का, प्रशांति निलयम बन गया केंद्र इस युग की साईं सेना का। जी हाँ, प्रशांति निलयम भगवान के युग निर्माण के मिशन के लिए संपूर्ण विश्व का शक्ति केंद्र बनता चला गया, और अब देखते हैं कि भगवान का संकल्प किस प्रकार बिना किसी बाधा के साकार हुआ है। स्वामी के दिव्य लीलाओं की कुछ और झलकियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी प्रेमावतार श्री सत्य साई में। साई राम।
अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा।
कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी।
घन घन नीला बदन अति सुंदर।
रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान कृष्ण की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं।
घन घन नीला वदन अति सुंदर, मेघ श्यामल माधव मुरहर। घन घन नील वदन अति सुंदर, मंद स्मित मुख राधा मनोहर। गोविंद गोपाल नटवर गिरिधर, मेघ श्यामल माधव मुरहर।
आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे सफेद दो भी कहते हैं।
घन घन नीला वदन अति सुंदर,
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 मेघ श्यामल माधव मुरहर,
मेघ श्यामल माधव मुरहर,
मेघ श्यामल माधव मुरहर,
मेघ श्यामल माधव मुरहर,
घन घन नीला वदन अति सुंदर,
घन घन नीला वदन अति सुंदर,
मंद स्मित मुख राधा मनोहर,
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 गोविंद गोपाल नटवर गिरिधर,
गोविंद गोपाल नटवर गिरिधर,
गोविंद गोपाल नटवर गिरिधर,
गोविंद गोपाल ನಟವರ ಗಿರಿಧರ
ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಲ ಮಾಧವ ಮುರಹರ
ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಲ ಮಾಧವ ಮುರಹರ
ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಲ ಮಾಧವ ಮುರಹರ
ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಲ ಮಾಧವ ಮುರಹರ
ಘನ ಘನ ನೀಲ ಬದನ ಅತಿ ಸುಂದರ
ಕಹರ್ವಾ ತಾಲ್ ಔರ್ ಅಧಿಕಾಂಶತಃ ರಾಗ ಮಿಯಾ ಕಿ ಮಲ್ಹಾರ್ ಪರ್ ಆಧಾರಿತ ಇಸ್ ಭಜನ್ ಕಿ ಧುನ್ ಜಾನ್ ಲೇನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಆಯಿಯೇ ಅಬ್ ರುಕ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಸಾಯಿ ಭಜನೋ ಕಿ ಆತ್ಮ ಕಹೆ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಭಾವ ಪಕ್ಷ ಕಾ
ಘನ ಘನ ನೀಲ ಬದನ ಅತಿ ಸುಂದರ
ಭಗವಾನ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ವರ್ಣ ಕೋ ನೀಲಾ ಇಸಿಲಿಯೇ ದಿಖಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೇ ಸಮುದ್ರ ಕೆ ಸಮಾನ್ ಗಹರೆ ಔರ್ ವೇ ಅಸೀಮಿತ ಆಕಾಶ ಕಿ ತರಹ ವಿಸ್ತೃತ ಹೈ ನೀಲಾ ವರ್ಣ ಹಮಾರಿ ಆಂಖೋ ಕೋ ದಿಖತಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಆಕಾಶ ಕಾ ಕೋಯಿ ರಂಗ ನಹೀ ಹೋತಾ ಠೀಕ್ ಉಸಿ ತರಹ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಭೀ ಕೋಯಿ ಗುಣ ನಹೀ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಮನ್ ಕೆ ಚಕ್ಷುವೋ ಸೆ ವೇ ನೀಲ ವರ್ಣ ಕೆ ದಿಖತೆ ಹೈ ಸನ್ 1996 ಮೇ ದಿಯೆ ಗಯೆ ಏಕ್ ಪ್ರವಚನ್ ಕೆ ದೌರಾನ್ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಕಹಾ ಥಾ ಕಿ ಹಮ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಆಕಾಶ ಕಾ ರಂಗ ನೀಲಾ ಹೈ ಸಮುದ್ರ ಕಾ ರಂಗ ಭೀ ನೀಲಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಯೆ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ನಹೀ ಹೈ ನಾ ತೋ ಆಕಾಶ ಔರ್ ನಾ ಹೀ ಸಮುದ್ರ ನೀಲೆ ರಂಗ ಕಾ ಹೈ ಸಮುದ್ರ ಕಿ ಗಹರಾಯಿ ಔರ್ ಆಕಾಶ ಕಿ ಅಸೀಮತಾ ನೀಲ ವರ್ಣ ಕಾ ಅಹಸಾಸ್ ಹಮೇ ಕರಾತಿ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಯೆ ಭೀ ಕಹಾ ಥಾ ಕಿ ಈಶ್ವರ ಅಥಾಹ ಹೈ ಔರ್ ಯೆ ಗಹರಾ ನೀಲಾ ರಂಗ ಉಸಿ ಗಹನತಾ ಕಾ ಸೂಚಕ ಹೈ ಸಮುದ್ರ ಔರ್ ಆಕಾಶ ಉನ್ಕಿ ಗಹನತಾ ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಲೆ ದಿಖಾಯಿ ದೇತೆ ಹೈ ಯೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ನೀಲ ವರ್ಣ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಅಬ್ ಹಮ್ ಅತಿ ಸುಂದರ ಶಬ್ದ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ ಸನ್ 1978 ಕೆ ಗ್ರೀಷ್ಮಕಾಲೀನ ಸಮರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೆ ದೌರಾನ್ ದಿಯೆ ಗಯೆ ಏಕ್ ಪ್ರವಚನ್ ಮೇ ಸ್ವಾಮಿ ನೆ ಕಹಾ ಥಾ ತೆಲುಗು ಕವಿ ಭಕ್ತ ಪೋತನಾ ಜೀ ಜೊ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸೆ ತೆಲುಗು ಮೇ ಅನುವಾದ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೈ ಉನ್ಹೊನೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಅವತಾರ ಕಿ ಸುಂದರತಾ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಪೋತನಾ ಜೀ ನೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಮುಖ ಕಿ ಉಪಮಾ ಚಂದ್ರಮಾ ಸೆ ಆಂಖೋ ಕಿ ಉಪಮಾ ಮಛಲಿ ಸೆ ಕಿ ಇಸ್ ತರಹ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಉನ್ಹೊನೆ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಗೋ ಕಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಸ್ತುವೋ ಸೆ ತುಲನಾ ಕಿ ಇಸ್ಕಿ ಓರ್ ಸಂಕೇತ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಜಬ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಉಪಮಾ ಚಂದ್ರಮಾ ಸೆ ವೇ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ ತಬ್ ಚಂದ್ರಮಾ ನೆ ಸೋಚಾ ಕ್ಯಾ ಮುಜ್ಮೇ ಔರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ದಿವ್ಯ ಮುಖ ಮೇ ಕೋಯಿ ಸಮಾನತಾ ಹೈ ಇಸ್ ಉಪಮಾ ಕೋ ಸುನ್ ವೇ ಶರ್ಮಿಂದಾ ಹುಯೆ ಔರ್ ಭಾಗ ಕರ್ ಆಕಾಶ ಮೇ ಛಿಪ್ ಗಯೆ ಇಸಿ ತರಹ ಮಛಲಿಯೋ ನೆ ಸೋಚಾ ಕಿ ಹಮ್ ಮೇ ಔರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ತಾರೋ ಜೈಸಿ ಚಮಕ್ತಿ ಹುಯಿ ಆಂಖೋ ಮೇ ಕೋಯಿ ಸಮಾನತಾ ನಹೀ ಹೈ ಔರ್ ವೇ ಭೀ ಸಮುದ್ರ ಕೆ ಗಹರೆ ಪಾನಿ ಮೇ ಜಾಕರ್ ಛಿಪ್ ಗಯಿ ಜಬ್ ಗೋಪಿಯೋ ನೆ ದೇಖಾ ಕಿ ಯೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೋಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಂದರತಾ ನಹೀ ಹೈ ತಬ್ ವೇ ಇಸ್ ನತೀಜೆ ಪರ್ ಪಹುಂಚಿ ಕಿ ಇಸ್ ಸುಂದರತಾ ಕಾ ಕಾರಣ ಉನ್ಕಾ ದಿವ್ಯ ಆನಂದ ಹೈ ಇಸ್ ತರಹ ಸೆ ಘನ ಘನ ನೀಲ ಬದನ ಅತಿ ಸುಂದರ ಇಸ್ ಲೈನ್ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹುವಾ ಹಮ್ ಉಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಜಿನ್ಕಾ ಚೆಹರಾ ಉನ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಗುಣೋ ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಲಾ ದಿಖಾಯಿ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ವೇ ಐಸೆ ಭಗವಾನ್ ಹೈ ಜೋ ಬಹುತ್ ಹೀ ಮನಮೋಹಕ ಹೈ ಔರ್ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಔರ್ ಆನಂದ ಕಾ ಪ್ರಸಾರ ಅಪ್ನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ದ್ವಾರಾ ಕರ್ತೆ ರಹತೆ ಹೈ ಚಲಿಯೆ ಅಬ್ ಚಲತೆ ಹೈ ಇಸ್ ಭಜನ್ ಕಿ ದೂಸರಿ ಪಂಕ್ತಿ ಪರ್
ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಲ ಮಾಧವ ಮುರಹರ
ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ್ ಯಾನಿ ವರ್ಷಾ ಕೆ ಕಾಲೆ ಬಾದಲೋ ಸಾ ಕ್ಯೂ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಉನ್ಹೊನೆ ಕಹಾ श्री कृष्ण मन को विषयों से खींचकर अपनी ओर आकर्षित कर मनुष्य की शांति, प्रेम एवं ज्ञान की जो पिपासा है उसे शांत करते हैं, जैसे वर्षा का पानी मनुष्य की प्यास बुझाता है। इसीलिए उन्हें मेघश्याम अर्थात वर्षा के काले बादल कहकर संबोधित किया जाता है। विषयों की प्यास जो तुच्छ है वो अपने आप ही गायब हो जाती है जब मन श्री कृष्ण के मधुर नाम और कृष्ण भाव में रम जाता है। भगवान ने आगे कहा कि जिसको भी कृष्ण की प्यास है, जो उनको वियोग की प्यास बुझाने पुकारता है, भगवान कृष्ण मेघ की तरह आकर उसकी प्यास बुझाने स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यही कारण है भगवान श्री कृष्ण को मेघश्याम नाम से संबोधित करने का। माधव शब्द के विच्छेद से प्राप्त होता है मां और धव। भगवान कृष्ण श्री विष्णु भगवान के अवतार हैं, इसीलिए यहां मां का अर्थ है लक्ष्मी जी, जो विष्णु भगवान की पत्नी है। मां का अर्थ प्रकृति भी है, धव का अर्थ है मालिक। तो इस प्रकार माधव का अर्थ हुआ श्री लक्ष्मी जी के मालिक अर्थात पति और प्रकृति के मालिक। भगवान कृष्ण ने मुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसीलिए उन्हें मुरहर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यहाँ मुर का तात्पर्य अज्ञान से भी है, जो हमें शरीर से बांधे रखता है और हमें अपने दिव्य स्वरूप से वंचित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण इस अज्ञान का विनाश कर हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हैं, इसीलिए उन्हें मुरहर शब्द से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार मेघ श्यामल माधव मुरहर इस पंक्ति में हम उस ईश्वर को पुकार रहे हैं जो वर्षा के काले बादल की तरह हमारे जीवन में आकर हमारी ब्रह्म से एक होने की पिपासा को मिटाते हैं। वे लक्ष्मी जी एवं प्रकृति के मालिक हैं और वे हमारे ऊपर पड़े अज्ञान के आवरण को हटा देते हैं। चलिए अब चलते हैं भजन की अगली लाइन पर।
मंदस्मितमुख राधा मनोहरा।
भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान की महिमा को दर्शाने के लिए भगवान बाबा प्रायः एक लघु कथा कहा करते थे, जिसमें एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई श्री बलराम जी और उनके एक दोस्त सात्विकी के साथ बचपन में एक जंगल में विचरण कर रहे होते हैं और एक राक्षस भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान के सामने नतमस्तक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान से उस राक्षस के हृदय को जीत लिया था। भगवान बाबा इस चिन्ह कथा अर्थात छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें बोध कराते हुए ये कहते थे कि गुस्से का विनाश गुस्से से नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि क्रोध को सहनशीलता से, क्रूरता को अहिंसा से, घृणा को करुणा एवं क्षमाशीलता से ही जीता जा सकता है। भगवान कृष्ण जब छोटी उम्र के थे तभी उनकी मुस्कान का ये कमाल था, इसीलिए उनको मंदस्मित मुख कहना सर्वथा उचित है। भगवान भी हमें ये उपदेश देते हैं कि हमें हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। ये मुस्कान निंदा स्वरूप दूसरों पर हंसने के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारी मुस्कान से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि दूसरों को उससे खुशी मिलनी चाहिए और आनंद का विस्तार होना चाहिए। मुस्कान एक सकारात्मक ऊर्जा है। कहा जाता है कि मुस्कुराते समय जब हमारे अधरों पर एक अर्धचंद्राकार विकृति आ जाती है, वो हमारे जीवन की सभी समस्याओं को सीधा कर देती है। इसीलिए हमें सदा स्मरण रहे कि हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, विशेषकर जब हम विषम परिस्थितियों और विकट व्यक्तित्व का सामना कर रहे हों। भगवान हमारे द्वारा अपनी सकारात्मक ऊर्जा एवं प्रेम को फैलाकर हमें जीवन का सामना करने में सक्षम बना देते हैं। राधा जी के बारे में भगवान ने कई बार विस्तृत वर्णन किया है और गूढ़ अर्थ बताया है। सन 1978 के समर कैंप अर्थात ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान दिए गए एक प्रवचन में स्वामी ने कहा, विश्व को ज्ञान का बोध कराने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया, इसी तरह विश्व को शक्ति का बोध कराने के लिए उन्होंने राधा जी को चुना। जिसके माध्यम से उन्होंने भक्तों के लक्षण को प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि जब हम मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं तो हमारी उस स्थिति को राधा कहा जाता है। राधा शब्द केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं है। हमें समझना चाहिए कि जो भी श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है वो राधा है। इसी प्रवचन में भगवान ने आगे कहा कि हमें अपने जीवन में उतारने योग्य लक्षण श्री राधा जी से सीखने चाहिए। एक ये कि हम मात्र हमारे मस्तिष्क को ज्ञान से भर दें, यही काफी नहीं है। हमारा हृदय भी प्रेम युक्त होना चाहिए। हम में भगवान के प्रति तीव्र जिज्ञासा एवं प्रेम होना चाहिए। राधा जी से हमें जो दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए वो ये है कि हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों को समर्पण भाव से भगवान के चरणों में लगाए रखना चाहिए, नहीं तो वे विषयगामी होकर हमें गलत रास्ते पर ले जाएंगी। भगवान बाबा ने कहा कि हम राधा जी को तभी समझ सकते हैं जब हम उनकी कृष्ण मिलन की तीव्र पिपासा की परिभाषा को समझ सकें। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आधार मानती थी और वे एक निरंतर धार की तरह उनकी आराधना करती रहती थी। श्री कृष्ण की ओर उनका प्रेम सदैव प्रवाहित होता रहता था। वे धरा यानी प्रकृति हैं, जो पुरुष अर्थात भगवान का ही दूसरा रूप है। चलिए अब चलते हैं इस भजन की अगली पंक्ति पर।
गोविंद गोपाल नटवर गिरिधर।
भगवान कहते हैं कि गोविंद का अर्थ हुआ वे जो गाय अर्थात जीव एवं समस्त प्राणी मात्र के पालनहार हैं। भगवान ने इसका अंतरार्थ बताते हुए कहा कि गोविंद का अर्थ है वे जो हमारे अंदर के पार्श्विक गुणों को नियंत्रण में रखते हैं और अपनी कृपा से उन पार्श्विक गुणों को दिव्य या दैविक गुणों में रूपांतरित कर देते हैं। अन्यत्र एक जगह स्वामी ने इस शब्द की एक और व्याख्या की है। उन्होंने कहा, गोविंद शब्द ध्वनि है। चाहे व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्द हों या जानवरों द्वारा निकाली गई ध्वनि हो, वेद कहते हैं कि इन सब का एक ही आधार है। ऊपरी सतह से वे भिन्न भिन्न ध्वनियां प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन उनकी आधारभूत ध्वनि एक ही है। इस तरह से गोविंद का अर्थ हुआ वे जो इस आधारभूत ध्वनि के साकार स्वरूप हैं। गोपाल शब्द में भी गो का अर्थ है गाय और पाल का अर्थ है पालन करने वाला, मतलब गायों की रक्षा करने वाला भगवान कृष्ण। नटवर का अर्थ है नृतकों का शिरोमणि। कथक नृत्य भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैलियों में से एक है। कहा जाता है कि इस नृत्य शैली में पैरों के थिरकन की जो आधारभूत ताल है वो श्री कृष्ण के कालिया नाग के फन के ऊपर किए गए नृत्य से ली गई है। गिरिधर दो शब्दों से बना है, गिरि एवं धर। गिरि का अर्थ है पहाड़ और धर माने धारण करने वाले। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कानी उंगली पर श्री गोवर्धन पर्वत का धारण कर लिया था, तभी से उनका नाम गिरिधर पड़ गया। इस प्रकार इस पंक्ति गोविंद गोपाल नटवर गिरिधर में हम उन ईश्वर की स्तुति करते हैं जो हमारे विघ्नों को दूर कर प्रेम से सबका पालन पोषण करते हैं। वे जो नर्तकों के शिरोमणि हैं एवं उदार हृदय भगवान जिन्होंने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया हुआ है। तो चलिए अब हम भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर हृदय को साई प्रेम की भावनाओं से भरकर भाव विह्वल होकर एक बार फिर से इस भजन को गाते हैं।
घन घन नील वदन अति सुंदर, घन घन नील वदन अति सुंदर, श्यामल माधव मुरहर। ಸ್ಮಿತಮುಖ ರಾಧಾ ಮನೋಹರ
इसी के साथ हमारी कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये प्रशिक्षण पसंद आया होगा। हम जल्द ही आपके सम्मुख एक और भजन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय साई राम।
साई प्रेम वाणी भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में।
अब प्रस्तुत है अवतार वाणी।
आज इसके अंतर्गत भगवान द्वारा 1 जून सन 2001 को अपने मुंबई स्थित निवास आश्रम धर्म क्षेत्र में दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
कौसल्यवर सूक्ति गर्भमौटन कदा रामुडु देवुडै రమణివాసే సీతామహాదేవి చలగి బ్రోచుట కదా కమలు కుశలములు తా గనులు నవుట ప్రేమస్వరూపులారా
ప్రేమ స్వరూపో
బ్రదర్హుడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాస్ కానీ मदरहुड ऑफ मदर चप्पल
अखिल भारतीय अध्यक्ष ने ईश्वर के पितृत्व और मानव के भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे के बारे में तो चर्चा की किंतु इन्होंने माता के मातृत्व के बारे में कोई बात नहीं।
प्रपंच ఎంతటి గొప్ప వ్యక్తికి పుట్టినప్పటికీ, ఎంత పరిపాలకును పాలించినప్పటికీ, అన్నింటికీ తల్లి గర్భమే ప్రధానము.
ఇస్ సృష్టి మే కోయి కితనా భీ మహాన్ ఇన్సాన్ క్యో న హో, ఉస్నే కోయి భీ ఉపలబ్ధి క్యో న హాసిల్ కీ హో, ఉస్నే భీ జన్మ తో ఏక్ మా సే హీ లియా హై.
తల్లి గర్భము భూమి వంటిది.
మా కా గర్భ మాత్ర భూమి కే సమాన్ హై.
ఎట్టి రుచికరమైన విత్తనములు భూమిలో పెట్టినప్పుడు అలాంటి రుచికరమైన పనులే మనకు అందిస్తుంది. ఎంతటి మధురమైనటువంటి విత్తనము భూమిలో నాటినప్పటికీ అట్టి మధురమైన ఫలములే అందిస్తుంది.
కిసీ భీ విశేష గుణ వాలా బీజ్ జో హమ్ బోతే హై వహ ఉస్ ఫల్ కీ విశేషతా హోతీ హై. కోయి భీ మీఠా బీజ్ జో హమ్ బోతే హై వహ ఫల్ కీ మిఠాస్ కే రూప్ మే హమే ప్రాప్త్ హోతా హై.
కనుక ప్రతి దేశమునకును తల్లి యొక్క గర్భమే భూమాత, అది ఏ వేదమాత, అది ఏ త్యాగమాత. అట్టి తల్లి గర్భము పవిత్రంగా ఉండినప్పుడే ప్రకృతి మంచి బిడ్డలను లోకానికి అందిస్తుంది.
ఇసీలియే హర్ దేశ్ కే లియే మా కా గర్భ మాత్ర భూమి హై, వహ వేద మాత హై, వహ మా కా త్యాగ హై. तभी से मां का गर्भ अति पवित्र है, क्योंकि वह इस संसार को पवित्र निर्मल बच्चे प्रदान करती है.
ईनाड प्रपंचमलो पवित्रमैना नित्य सत्यमैना त्यागशीलुलैनटुवंटि व्यक्तुलु जन्मिंचडं लेदंटे दीनिकि कारणं एमिटि? तल्लि गर्भमुनु पवित्रमैनटुवंटि रीतिगा मनं चूचुकोवटं लेदु. तल्लि गर्भमु प्रशांतमैनप्पुडु లోకమంతా ప్రశాంతంగానే ఉంటుంది.
యది ఆజ్ కే యుగ్ మే హమారే పాస్ శుద్ధ నిర్మల్ లోగ్ నహీ హై, త్యాగ కర్నే వాలే లోగ్ నహీ హై, తో ఇస్కా క్యా కారణ హై? హమ్ మాతా కే గర్భ కీ నిర్మలతా పర్ సావధానీ పూర్వక్ ధ్యాన్ నహీ దేతే. యది మాతా కా గర్భ శాంతి సే పరిపూర్ణ హై, తో సారీ దునియా శాంతి సే పరిపూర్ణ హోగీ.
కనుక మొట్టమొదట పవిత్రమైనటువంటి స్త్రీలు జగత్తుకు అత్యవసరము. అట్టి గుణవంతులైనటువంటి స్త్రీలు లోకములో ఉండటం చేతనే భారతదేశము త్యాగభూమి, యోగభూమి, కర్మభూమిగా మారుతూ వచ్చింది.
ఇసీలియే ఇస్ దునియా కే లియే హమే సబ్సే పెహలే ఔర్ సబ్సే అధిక్ జరూరత్ శుద్ధ నిర్మల్ నారీ కీ హై, క్యోంకి ఉస్ సమయ భారత్ మే ऐसी विशुद्ध नारियां थीं, इसलिए भारत शेष विश्व के लिए एक आदर्श बना.
కనుకనే భారత దేశమునకు కూడాను భూమాత అని చెప్పారు. మదర్ ల్యాండ్ అంటున్నారే కానీ ఫాదర్ ల్యాండ్ అని చెప్పటం లేదు. ప్రతి దేశమునకు కూడాను మదర్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. మాతృభావం కంటే మించినటువంటి భావం మరొకటి లేఖంలో లేదు. కనుక ఈనాటి మాదర్లు తల్లిదండ్రులకు తగినటువంటి తృప్తిని అందించటం లేకపోవటమే ఇది ఏ పిల్లల యొక్క దోషము. తల్లిదండ్రులకు తృప్తిని అందించినప్పుడే జగత్తంతా తృప్తికరంగా ఉంటుంది. మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ, మాతాపితరులు దైవస్వామ రూపులు. మాతృదేవిని మనం సంతోషపరచాలి, అప్పుడే మన దేశం కూడాను ఆనందంతో తొలుతూవుతుంది.
భారతదేశమే హం మాతృభూమికే బారేమే बातें करते हैं. लोग अक्सर मातृभूमि बोलते हैं, वे कभी भी पितृभूमि नहीं बोलते. हरेक देश के लिए मां बहुत महत्वपूर्ण होती है. मां का एहसास अन्य सभी वस्तुओं से परे होता है. बच्चे में कोई दोष होता है तो वो इसलिए क्योंकि वे अपने माता पिता की भावनाओं का आदर नहीं करते. यदि तुम अपने माता पिता को खुश रखोगे तो यह संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो जाएगा. हमें यह बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि माता पिता का स्थान दैवत्व की जगह है, ईश्वर तुल्य है. हमें अपनी माता को प्रसन्न रखना चाहिए, केवल तभी इस दुनिया में शांति और आनंद फैलेगा.
कनुका प्रति मानवड़ कुडनु దైవము దైవము అని ప్రత్యేకించి దైవాన్ని పూజించటం అర్థం లేనటువంటిది. తల్లిని మొట్టమొదట పూజించాలి. మీ జన్మముకు మూల కారణం తల్లియే. మాతృభావము కంటే మించిన భావము ఈ జగత్తులో మరొకటి లేదు. కనుకనే మాతృహృదయాన్ని అమృతమయంగా మార్చినప్పుడే జగత్తంతా అమృతమయంగా ఉంటుంది.
ఇస్లియే యహ్ మహత్వపూర్ణ నహీ హై కి హమ్ ఈశ్వర్ కి పూజా ఆరాధనా కర్కే ఉన్హే ప్రసన్న కరే. సర్వప్రథమ్ తుమ్ అప్నీ మా కి పూజా కరో. తుమ్హారే ఇస్ జన్మ కా ప్రముఖ కారణ హై మా. కోయి భీ ఎహసాస్ మా కే ఎహసాస్ సే బడా నహీ హో సక్తా. జబ్ మా కా హృదయ సంపూర్ణతః అమృత తుల్య బన్ జాయేగా కేవల్ తభీ ఇస్ దునియా కా రూపాంతరణ అమృత్ మే హో జాయేగా.
కనుక శ్రీరామునికు దేవుడని పేరు రావడానికి కారణమేమిటి? కౌసల్యవర సూక్తి గర్భమవుతుంది కదా. కౌసల్య గర్భంలో పుట్టి కౌసల్య మహాగుణములు ఈ యొక్క కుమారునికి అందించడం చేతనే తాను దేవుడిగా మారాడు. అదేవిధంగానే తల్లి జీజీబాయి గొప్ప పరమభక్తురాలుగా ఉండటం చేతనే పుత్రుడు శివాజీ అనేటువంటి వీరపుత్రుడు ఆమె కలిగి దేశానికి త్యాగం చేస్తూ వచ్చాడు. ఇదే విధంగానే తల్లి యొక్క అదృష్టవశక్తినే పిల్లల యొక్క భాగ్యం కూడా పండుతుంది.
యా కారణ హై కి శ్రీరామ్ కో భగవాన్ కహా జాతా హై క్యోంకి ఉన్హోనే కౌశల్యా కే గర్భ సే జన్మ లియా థా ఔర్ ఉన్హే కౌశల్యా కి విశేషతాయే ప్రాప్త హుయి థీ ఇసిలియే వే భగవాన్ కి తరహ పూజే గయే. శివాజీ నే దేశ్ కే లియే బహుత్ అధిక త్యాగ్ కియా క్యోంకి వే విశుద్ధ నిర్మల్ నారీ జీజాబాయి కి కోఖ్ సే పైదా హుయే థే. ఇసి ఏక్ రాస్తే సే మా కే కారణ బచ్చో కా అచ్చా భాగ్య ఆయేగా.
కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, ప్రేమకు మించినటువంటిది మరొకటి ఇంకోటి జగత్తులో లేదు. మన సకల సౌభాగ్యములకు అన్నిటికంటే ప్రేమనే ప్రధానమైనటువంటి ఆస్తి. ప్రేమ లేని మానవుడు కేవలం జీవనం లేనటువంటి వాడే. అటువంటి ప్రేమతత్వం చేత ప్రేమమయమైనటువంటి తల్లిని మనం ఆరాధన చెయ్యాలి. లోకంలో శాంతి 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 ఎక్కడ ఉన్నది? ఒక్క తల్లిని మాత్రమే మనం సంతోషపెట్టలేనటువంటి వారము. దేశాన్ని ఏ రీతిగా శాంతిని సాధించగలము? శాంతి అనేటువంటిది ఎక్కడో బజారులో లేదు. ప్రతి మానవుని హృదయము శాంతి భవనమే. హృదయమును శాంతి ప్రేమతో నింపుకున్నప్పుడే జగత్తంతా కూడా శాంతిమయంగా రూపొందుతుంది. ఈనాడు శాంతి లేకపోవడానికి కారణమేమిటి? మానవుని యందు పరిపూర్ణమైన ప్రేమ లేదు. మానవుని పరిపూర్ణమైన ప్రేమను సాధించినప్పుడే జగత్తులో పరిపూర్ణమైన శాంతిని కూడా మనం సాధించవచ్చు.
ప్రేమ సే పరే కహీ కుచ్ భీ నహీ హై. హమ్ సబ్కే భాగ్య కి అచ్చాయియోం కా ఏక్ మాత్ర నిమిత్త ప్రేమ హీ హై. ఏక్ ఇన్సాన్ ప్రేమ కే బినా జీవన్ విహీన్ హై. ఇస్లియే ఉసే మా సే ప్రేమ ఔర్ ఉస్కీ పూజా కర్నీ చాహియే జో కి సాక్షాత్ ప్రేమ స్వరూప హై. ఇస్ దునియా మే శాంతి కహాం హై? జబ్ హమ్ అప్నీ మా కో ప్రసన్న నహీ రఖ సక్తే తో భలా ఇస్ దునియా మే శాంతి కైసే హోగీ? హమ్ బాజార్ సే శాంతి నహీ ఖరీద్ సక్తే. హర్ ఏక్ ఇన్సాన్ కా హృదయ ప్రేమ కా ఘర్ హోనా చాహియే. జబ్ తుమ్ అప్నా హృదయ ప్రేమ సే భర్ లోగే కేవల్ తభీ తుమ్ శాంతి పా సకోగే. క్యోంకి ఇస్ దునియా మే ఆద్మీ కే పాస్ సంపూర్ణ ప్రేమ నహీ హై. ఇసీ కారణ సే ఇస్ దునియా మే అశాంతి హై. జబ్ తుమ్హారే హృదయ మే సంపూర్ణ ప్రేమ హోగా తబ్ ఇస్ దునియా మే సంపూర్ణ శాంతి హోగీ.
ప్రేమ స్వరూపులారా, మన జీవితము మానవ జన్మము. మానవ జన్మం కంటే మించినటువంటిది మరొకటి లేదు. జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం. మానవుడిగా పుట్టి మానవుడిగా పెరిగి మానవుడిగా జీవించి మానవ సమాజంలో నివసించి సొసైటీ యొక్క శాంతిని మనం ఎందుకు కోరకూడదు? మనం సంపాదించినటువంటి సర్వ కర్మను కూడాను ఈ సొసైటీ వల్లనే వచ్చింది. కనుకనే అట్టి సొసైటీకి మనం తగినటువంటి యొక్క కృతజ్ఞతను అందించాలి. అట్టి సమాజములకు తగినటువంటి తృప్తిని అందించకపోవటం చేతనే ఈ జగత్తు ఇన్ని విధమైనటువంటి కష్టములకు గురి అవుతూ వచ్చింది. కనుకనే సొసైటీని మనం ఎప్పుడు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. సొసైటీ నుంచినే మనం పుట్టాము. సొసైటీ నుండే మనం పెరుగుతున్నాము. సొసైటీ నుండే మనం మన సర్వ ధనమును కూడా సంపాదించున్నాము. కానీ సొసైటీ యొక్క గౌరవాన్ని మనం చూడటం లేదు. అదే మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద దోషము.
దివ్య ప్రేమ స్వరూపో హమారా జీవన్ ఏక్ మానవ జన్మ హై. మానవ జన్మ సే శ్రేష్ఠ యహాం ఔర్ కుచ్ భీ నహీ హై. మానవ జన్మ अन्य सभी जन्मों से बढ़कर है। एक मानव के रूप में जन्म, एक मानव की तरह विकास, एक मानव की तरह जीविका, समाज में रहना, तो फिर क्यों हम सामाजिक सद्भावना की तरफ ध्यान नहीं देते? जो कुछ भी धन संपदा तुमने अर्जित की है वह इसी समाज से आई है। हमें चाहिए कि हम समाज के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। इस दुनिया में समस्याएं हैं क्योंकि हमने समाज की उपेक्षा की है। हमें समाज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम इसी समाज से पैदा होते हैं, हम समाज में विकसित होते हैं, हमारी सारी संपत्ति इसी समाज से आती है, किंतु हम समाज के कल्याण की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वह मानव जाति का बहुत बड़ा अवगुण है।
मन सोसाइटी मन मोटमोट गौरव समाजा गौरवा अच्छी समाज क्षेमे मन क्षेम का भाव समाज गौरव मन गौरव का उवरना सामजा गौरव स्वार्थम स्वार्थम तप पदार्थमेमात्र कल कन स्वार्थमने दाने पक्न पी पदार्थमने दाने से पड़ी కనుకనే నేను పరార్థమనేటువంటి ఒక భగవద్భక్తిని మనం సంపాదించుకుంటే జగత్తంతా కూడాను శాంతి భద్రతలతో తొలుతూగుతుంది. ప్రపంచమంతా కూడాను శాంతిగా ఉండాలంటే మనం మొట్టమొదట మన హృదయాన్ని శాంతిగా నింపుకోవాలి. శాంతి శాంతి ఎక్కడ ఉంది మనకు శాంతి? అంతా మన హృదయం నందే ఉంటుండాలి. మన హృదయమే శాంతి, మన హృదయమే సత్యము, మన హృదయమే ధర్మము, మన హృదయమే ప్రేమ. ఇట్టి హృదయాన్ని మనం మర్చిపోయి శాంతి 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 అని బజార్ల వెంట తిరుగుతూ ఉంటే శాంతి మనకు ఎట్లా లభిస్తుంది? పీస్ అనేటువంటిది బజార్లో చిక్కదు మనకు. బజార్లో చిక్కేది పీసెస్. పీస్ అనేది మన హృదయంలో ఉంటుండాలి. హృదయాన్ని మొట్టమొదట మనం పరిపూర్ణం గావించుకోవాలి. ఏ పని చేసినా పరిపూర్ణమైన ప్రేమతో చేయాలి.
హమే సబ్సే పెహలే సమాజ్ కా సమ్మాన్ కర్నా చాహియే. సమాజ్ కా కళ్యాణ్ హీ హమారా కళ్యాణ్ హై. సమాజ్ కే మాన్ సమ్మాన్ ఔర్ కళ్యాణ్ మే హీ हम सब का मान सम्मान और कल्याण निहित है। क्या कोई भी समाज की परवाह करता है? नहीं, यह सब स्वार्थ और केवल स्वार्थ है। समाज में स्वार्थ से निकृष्ट वस्तु कोई और नहीं है। स्वार्थ भावना को एक तरफ रखो और भलाई की ओर जाओ। यदि अपने अच्छे कर्मों से हम अच्छा भाग्य अर्जित करते हैं तो हम समाज की ओर अवश्य ध्यान देंगे। यदि हम इस जगत में शांति चाहते हैं तो हमें स्वयं अपने भीतर शांति लानी चाहिए। यह शांति है कहां? यह केवल हमारे हृदय से आती है। हमारा हृदय शांति है, हमारा हृदय धर्म है, हमारा हृदय प्रेम है। हम ऐसे हृदय को भुला चुके हैं। हम शांति की तलाश में सड़कों पर भटक रहे हैं। तुम इसे सड़कों पर नहीं पा सकते, वहां तो तुम्हें केवल टुकड़े मिलेंगे। वास्तव में शांति हमारे हृदय में है। अपने हृदय को कल्याणकारी बनाओ। तुम जो भी कार्य करो उसे पूरे प्रेम सहित करो।
अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज इसके अंतर्गत भगवान द्वारा 1 जून सन 2001 को अपने मुंबई स्थित निवास आश्रम धर्म क्षेत्र में दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग प्रस्तुत किया गया था।
अब प्रस्तुत है गान सरिता।
आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के विद्यार्थियों द्वारा रचित श्री कृष्ण भगवान के एक गीत का प्रसारण किया जा रहा है। इसे स्वामी की अलौकिक उपस्थिति में 22 नवंबर सन 2011 को प्रस्तुत किए गए नाटक गुरु महिमा के मंचन के दौरान प्रस्तुत किया गया था।
हरे हरे। कुंज विहारी राधा के संग जिनकी कृपा से जीवन तारे। श्यामल छवि और अंग त्रिभंग जो हरि के अधर पर धन्य है मुरली जो हरि के अधर पर हरि की श्वास में जग को भुलाए हरि गीत गाए जग को भुलाए 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 तो राधा के संग श्याम को पाए श्यामल छवि और अंग त्रिभंग। हीरे मोती के मुकुट भी क्या वो चरणों की धूल जो शीश लगाए जग को भुलाए जग को भुलाए। पीतांबर क्या धन्य है वो जो तांबर क्या धन्य है वो जो हरि के शरीर के स्पर्श को पाए जन्म जन्म क्या उसने किया जो नित दिन राधे श्याम गुण गाए। बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे 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 बो
बोलो राधे 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 बो
श्याम राधे 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 बो
श्याम राधे 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 बो बोलो राधे राधे
बोलो राधे
अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम गान सरिता।
इसके अंतर्गत आपने बाबा के विद्यार्थियों द्वारा बनाया हुआ श्री कृष्ण भक्ति में सराबोर एक गीत सुना। इसकी प्रस्तुति स्वामी की अलौकिक उपस्थिति में 22 नवंबर सन 2011 को प्रस्तुत किए गए नाटक गुरु महिमा के मंचन के दौरान की गई थी।
इसी के साथ हमारी साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393258258 हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपने इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इसी प्रार्थना के साथ हम साई प्रेमवाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।